بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت کرمانک 32، 33 اور 34 کی تلاوت اور انواد سنیں گے ایران کے پرکھیات قاری ابو القاسم سے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما لا في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے پیغمبر کی پتنیوں، تم سامانیہ محلاؤں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو، یدی تم اللہ کا ڈر رکھو تو کسی ویکتی سے کومل سور میں بات نہ کرو کہ وہ ویکتی جس کے من میں روگ ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، اور سدیو بھلی بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو اور پچھلے اگیانتا کے کال کی بھانتی بن ٹھن کر باہر نہ نکلو، نماز قائم کرو اور زکات دو اور اللہ اور اس کے پیغمبر کا آگیا پالن کرو۔ ہے پیغمبر کے پریجنوں، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور تمہیں اس پرکار کا پوتر رکھے جس پرکار پوتر رہنے کا حق ہے۔ اور ہے پیغمبر کی پتنیوں، تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور تتو درشتا کی جن باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد رکھو کہ نشچے ہی اللہ اتینت سوکشم درشی اور خبر رکھنے والا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑراج ایران کی آواز۔ دوستو، آپ ہمارے پرساروں کو شارٹ وے میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@ws.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 00989035065492۔ دوستو، آج مہر کی 14 تاریخ ہے اور اکتوبر کی 6 تاریخ، ساتھ ہی آج اسلامی کیلنڈر کے تیسرے مہینے ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے۔ آج کی ہماری سبھا کے کاریکرموں کی روپ ریکھا کچھ اس پرکار ہے۔ سب سے پہلے آپ خبر سنیں گے، اس کے بعد آپ سنیں گے کاریکرم راجنیتک چرچا، اور اس کے بعد آپ کی سیوا میں پیش کیا جائے گا کاریکرم آج کی بات، اور آج کی سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا سفل مہیلائیں۔ تو دوستوں، کاریکرم کے انوسار اب آپ ریڈیو ہندی تہران سے راشٹریہ اور انتراشٹریہ سماچار رویش زیدی سے سنیں گے۔ سب سے پہلے آج کے مکھ سماچاروں کا سارانش۔ ایران اور دنیا بھر میں انتم ایشوریہ دوت حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت کی شروعات کا جشن۔ کابل کی ایک مسجد میں پھر دھماکہ، کم سے کم 25 لوگوں کی موت۔ اوپیک پلس کے فیصلے سے امریکہ ہوا پریشان، وائٹ ہاؤس کی پرتکریا، کہا اوپیک نے روس سے ملایا ہاتھ۔ تھائی لینڈ کے ایک پری اسکول میں پورو پولیس ادھیکاری کی اندھادھن فائرنگ، 23 بچوں سمیت 32 کی موت۔ اب آپ کی سیوا میں وستار سے سماچار پیش ہے۔ آج گروار کو اسلامی کیلنڈر کے ربیع الاول مہینے کی 9 تاریخ کو ایران اور دنیا بھر کے شیعہ مسلمان اپنے 12ویں امام حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت کی شروعات کی ورشگانٹھ کا جشن منا رہے ہیں۔ 8 ربیع الاول 260 ہجری کو 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت مہدی امامت کے درجے پر اسین ہوئے۔ بھارتیہ اپ مہادیپ میں شیعہ مسلمانوں کے لیے 8 ربیع الاول کی تاریخ محرم سے شروع ہوئے سوگ کی آخری تاریخ ہوتی ہے، اور لوگ 9 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں۔ امام زمانہ مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اپنے پتا کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے، جسے غیبت صغرا کہا جاتا ہے۔ 2060 ہجری سے شروع ہونے والی غیبت صغرا 329 ہجری تک جاری رہی۔ اس دوران امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اپنے 4 وشیش پرتندیوں کے مادھیم سے لوگوں کے سمپرک میں رہے۔ یمن کی اچ راجنیتک پریشد نے سرکشا پریشد کے بیان کو اتیوادی بتاتے ہوئے اپنی پرتکریا ویک کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ یمنی لوگوں کی مانگوں کے انوروپ نہیں ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی اچ راجنیتک پریشد کے سدس محمد علی الحوثی نے کہا ہے کہ سرکشا پریشد کا بیان چرمپنتھی ہے اور یمنی لوگوں کی مانگوں کے انوروپ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مانگ امانوی گھیرابندی ختم کرنے، یمنی راست کو اس کا ادھیکار دلانے اور ہوائی اڈوں کو پھر سے کھولے جانے سے زیادہ نہیں ہے۔ بتا دیں کہ سنیکت راشٹر سرکشا پریشد نے یمنی لوگوں کی سمسیاؤں اور ان کی مانگوں پر کوئی دھیان دیے بنا رچناتمک وارتا میں یمن کی راشٹریہ سرکار کی بھاگیداری کی مانگ کی ہے۔ وہیں اس سے پہلے یمن کی اچ راجنیتک پریشد کے پرمکھ مہندی المشات نے کہا تھا کہ سعودی گٹھ بندھن میں شامل حملہور دیشوں نے یمن کو 7 ورشوں کے دوران بربر اور پاشوک حملوں کا نشانہ بنایا اور ہزاروں بے گناہ یمنیوں کی موت کی نیند سلا دی، لیکن اتنے اتیاچاروں کے باوجود حملہور اپنے کسی بھی لکش کو پراپت نہیں کر سکے ہیں۔ اسرائیل کے پور پردھان منتری بنیامین نیتن یاہو کو سینے میں درد کی شکایت کے بعد اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے۔ پراپت رپورٹ کے مطابق بدھوار کو نیتن یاہو کو سینے میں درد اٹھا، جس کے بعد انہیں اوید ادھیکرت بیت المقدس کے ایک اسپتال میں بھرتی کرایا گیا۔ اسرائیل میں 1 نومبر کو عام چناؤ کے لیے متدان ہوگا، یہ پچھلے سال میں 5واں چناؤ ہوگا۔ اس چناؤ سے نیتن یاہو کافی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اور وہ یاہیر لیپٹ کو ستہ سے ہٹا کر خود پردھان منتری بننے کا پریاس کر رہے ہیں۔ 72 ورشیہ پورو زیونی پردھان منتری اپنی کٹر پنتھی نیتیوں کے لیے جانے جاتے ہیں۔ روس نے تیل اتپادک دیش اوپک کے ساتھ مل کر بڑا کھیل کر دیا ہے۔ اوپک پلس نام سے پرسدھ اس سنگٹھن نے تیل اتپادن میں کٹوتی کا اعلان کیا ہے۔ ایسے میں پہلے سے ہی کم اتپادن کے کارن چرم پر پہنچے تیل کی قیمتوں میں اور آگ لگنے کا انمان ہے۔ پراپت رپورٹ کے مطابق امریکہ سمیت پشچمی دیش، جہاں ایک اور لگاتار اوپک دیشوں سے تیل کے اتپادن کو بڑھانے کا انوروھ کرتے رہے ہیں، وہیں اوپک نے تیل کے اتپادن کو کم کرنے کا اعلان کر کے امریکہ اور پشچمی دیشوں کو چونکا دیا ہے۔ اوپک کی گھوشنا کے بعد وائٹ ہاؤس نے اس پر پرتکریا دیتے ہوئے کہا کہ پیٹرولیم نریاتک دیشوں کے سنگھٹن اوپک پلس نے روس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سچیو کرین جین پیئرے نے ایئر فورس ون کے دورے کے دوران کہا کہ آج کی گھوشنا یہ اسپشٹ کرتی ہے کہ اوپیک پلس روس کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ بتا دیں کہ امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن نے ابھی حال ہی میں کیول اسی لیے سعودی عرب کی یاترا کی تھی تاکہ وہ تیل کے اتپادن کو بڑھانے کے لیے ریاض کو منا سکیں۔ تھائی لینڈ کے ایک پری اسکول میں ہوئی گولی باری میں کم سے کم 32 لوگوں کے مارے جانے کی سوچنا ہے۔ پراپت رپورٹ کے مطابق تھائی لینڈ کے پور اتر کے ایک پری اسکول میں ایک پور پولیس ادھیکاری نے اندھا دھن فائرنگ کر کے کم سے کم 23 بچوں سمیت 32 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ تھائی لینڈ کے اتر پور میں نونگ بوا لامفو میں ہوئے حملے کے بعد بندوق دھاری نے سوسائڈ کر لیا۔ استھانیہ پولیس نے کہا کہ حملہور نے بچوں اور ویسکوں پر گولیاں برسائیں اور چاقو سے حملہ کیا۔ وہیں تھائی لینڈ کی میڈیا دوارا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حملہور نے اسکول میں گولی باری کے بعد اپنی پتنی اور بچے کی بھی ہتیا کر دی اور پھر خودکشی کر لی۔ حملے کے پیچھے کا ادیش فی الحال اسپشٹ نہیں ہے۔ اتر کوریا نے ایک اور میزائل داغ کر امریکہ کو سندیش دیا ہے کہ تم دھمکی دیتے رہو اور ہمارے خلاف سازشیں کرتے رہو، ہم تمہاری دھمکیوں کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں۔ پراپت رپورٹ کے مطابق دکشن کوریا نے دعویٰ کیا ہے کہ اتر کوریا کے 12 یدھک ویمانوں نے اس کی سیما کے پاس اڑان بھری ہے، جس کے جواب میں انہیں 30 سین ویمان تعینات کرنے پڑے۔ دکشن کوریا کے سینا کا کہنا ہے کہ اتر کوریا کے 8 لڑاکو جیٹ اور 4 بمبرشک ویمانوں نے اڑان بھری۔ سینا نے کہا کہ ایسا جان پڑتا ہے کہ اتر کوریائی ویمانوں نے ہوا سے سطح پر گولی باری کرنے کا ابھیاس کیا ہے۔ اس بیچ ودیشی میڈیا کی رپورٹ کے انوسار اتر کوریا نے ایک اور میزائل پرکشن کیا ہے۔ 2 سپتاہ میں یہ اس کا 6ٹا میزائل پرکشن ہے۔ پرکشن کے دوران کم دوری کی 2 میزائل داغی گئی ہیں۔ روس نے چیتاونی دی ہے کہ اگر امریکہ نے یوکرین کو ادھک ہتھیار دیے تو پشچم اور روس کے بیچ سیدھے سین ٹکراؤ کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ بدھوار کو امریکہ میں روس کے راجدوت اناتولی اتونوف کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اس کے سہیوگیوں دوارا سین مدد اور ہتھیاروں کی آپورتی سے نہ صرف رکھپات میں وردھی ہوگی بلکہ روس اور پشچم دیشوں کے بیچ سیدھے سین ٹکراؤ کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ अतुर्नोफ ने कहा कि युद्ध के दौरान यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति वास्तव में संघर्ष में अमेरिका का सीधे भाग लेना है। उनका कहना था कि हम इसे राष्ट्र की राजनीतिक हितों पर सीधा प्रहार मानते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गृह मंत्रालय कंपाउंड के पास स्थित एक मस्जिद में एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें कम से कम 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक धमाके में कम से कम 2 लोगों मारे गए हैं और 18 से ज्यादा घायल हो गए हैं। तालिबान सरकार ने धमाके के बारे में फिलहाल कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है और न ही ये बताया है कि इस धमाके के पीछे किस गुट का हाथ हो सकता है। हालांकि हालिया दिनों में अफगानिस्तान में कई आतंकवादी हमले हुए हैं जिसमें तकफीरी आतंकवादी गुट दाइश के आतंकवादियों का हाथ बताया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि अगस्त में मास्को के पास कार बम धमाके में रूस के राष्ट्रवादी नेता और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी देरिया दुगिना की मौत में यूक्रेन सरकार की भूमिका थी। अमरीकी अखबार ने बुधवार को बताया कि यूक्रेन की कथित भूमिका का आकलन पिछले हफ्ते अमरीकी सरकार के साथ साझा किया गया था। तो दोस्तों, समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हमें इजाजत दीजिए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम लेकर उपस्थित है कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। रूस की गैस पाइपलाइन में धमाके से जर्मनी के चांसलर चिंतित। इसराइल के रक्षा मंत्री की अजरबैजान यात्रा के तुरंत बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्री बाकू में। और भाजपा का दावा कि कांग्रेस देश की राष्ट्रपति का कर रही है अपमान। दोस्तों, इन विषयों पर कार्यक्रम में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या ये मात्र संयोग है कि जब तुर्की और इसराइल के सैन्य शिष्टमंडल अजरबैजान गणराज्य पहुंच रहे हैं, उसी दौरान सऊदी अरब के विदेश मंत्री बाकू पहुंचे हैं? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे साथी सैयद मीसम।
इसराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स की बाकू की यात्रा के एक दिन बाद ही सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अजरबैजान की यात्रा पर पहुंचे और वहां उन्होंने अपने आजरी समकक्ष जेहून बायरामोव से मुलाकात के अलावा इस देश के राष्ट्रपति इलहाम अलियोव से भी मुलाकात की। हालांकि बिन फरहान की बाकू यात्रा का उद्देश्य सऊदी अरब अजरबैजान के संबंधों की 30वीं सालगिरह बताया गया था, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इस यात्रा का असली मकसद यही था जिसकी घोषणा की गई है। इसराइली रक्षा मंत्री की बाकू की यात्रा के एक दिन बाद और फैसल बिन फरहान की यात्रा से पहले तुर्क रक्षा मंत्री हुलूसी आकार ने बाकू का दौरा किया और अपने आजरी समकक्ष से मुलाकात की। यानी ऐसे समय में कि जब बाकू तुर्की और इसराइल के सैन्य शिष्टमंडलों की मेजबानी कर रहा था, सऊदी विदेश मंत्री भी वहां पहुंच गए। ये कोई एक संयोग नहीं हो सकता है। इसलिए इस रहस्य का पता लगाने के लिए कि बाकू एक ही साथ क्यों तुर्की, इसराइल और सऊदी अरब के प्रतिनिधि मंडलों की मेजबानी कर रहा है मध्य पूर्व के राजनीतिक घटनाक्रमों और इससे भी आगे जाकर यूक्रेन और रूस युद्ध पर नजर डालना होगी। मध्य पूर्व के घटनाक्रमों की जहां तक बात है, ज़ायोनी शासन फिलिस्तीनी मुद्दे को खत्म करने और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों से यू टर्न लेने के लिए फारस खाड़ी के अरब देशों से संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास कर रहा है, ताकि इस तरह से अरबों और मुसलमानों की सहमति प्राप्त कर सके या कम से कम अरबों और मुसलमानों की दुश्मनी के केंद्र से खुद को हटा सके। गेंट्स की बाकू यात्रा को इसराइली मीडिया ने तथाकथित इब्राहिमी समझौते की ही एक कड़ी करार दिया है और दावा किया है कि इससे बाकू को अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में अपना दूतावास खोलने के लिए राजी किया जा सकता है। जिस तरह से सऊदी अरब की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद यूएई और बहरीन ने यह कदम उठाया था, जैसा कि अक्सर विश्लेषकों का मानना है, ज़ायोनी शासन द्वारा आजरबैजान पर अधिक ध्यान देने का एक मुख्य कारण इस देश की सरजमीन से ईरान के लिए चुनौतियां उत्पन्न करना है। इसराइल ने ईरान की सीमा से 7 किलोमीटर की दूरी पर आजरबैजान की सीमा में जंगलान इलाके में एक डिजिटल विलेज भी स्थापित किया है, ताकि अपनी आतंकवादी और जासूसी गतिविधियों को गति प्रदान कर सके। इसी तरह से जल संकट के प्रबंधन में बाकू की मदद के बहाने ज़ायोनी शासन ईरान और आजरबैजान के बीच मतभेद उत्पन्न करने की साजिश रच रहा है। आजरबैजान में अपनी गतिविधियों के सहारे ज़ायोनी शासन इस क्षेत्र में जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है वो तुर्की और सऊदी अरब के उद्देश्यों से मेल खाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि एक ही समय में इसराइल, तुर्की और सऊदी अरब के अधिकारियों की बाकू यात्रा का रहस्य भी इन्हीं उद्देश्यों में छिपा हुआ है।
यूरोप में ऊर्जा का संकट गहराता जा रहा है। बात इतनी बढ़ चुकी है कि जर्मनी की सरकार कोयले से चलने वाले बिजली घरों को पुनः चालू करने जा रही है। बर्लिन से अमीर शुजाई की रिपोर्ट को स्वर दे रहे हैं साथी अहमद अब्बास।
रूस की गैस सप्लाई पाइपलाइन में धमाके की घटना यूरोप के लिए गैस की सप्लाई पूरी तरह ठप पड़ जाने की घटना है। जर्मन चांसलर शोल्ट्स इससे बहुत चिंतित दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि बाल्टिक सागर में गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अब हाल फिलहाल में यूरोप को रूस से गैस नहीं मिल पाएगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को पहुंचने वाला है। अमरीकी टीकाकार ने ब्लूमबर्ग से बातचीत में कहा कि इस विध्वंस की घटना का सबसे ज्यादा फायदा अमरीका को पहुंचने वाला है। टीकाकार ने कहा कि राडार की कई तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि पोलैंड में तैनात कई हेलीकॉप्टर इस घटना स्थल के आसपास उड़ रहे थे। इसी साल के शुरू में हमने देखा कि अमेरिका धमकियां दे रहा था कि हम हर हालत में नॉर्थ स्ट्रीम का काम तमाम करके रहेंगे और इसे जारी नहीं रहने देंगे। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने गत शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह बड़ा अच्छा मौका हाथ आया है। ऊर्जा और आर्थिक संकट यूरोप के लोगों को सड़कों पर लाया है और वे अपनी सरकारों की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ जर्मनी ने ऐलान किया है कि सर्दियों के लिए उसने अपने गैस भंडार भर लिए हैं, मगर दूसरी ओर मीडिया का कहना है कि इन गैस भंडारों का अख्तियार अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के हाथ में है। सरकार का इस पर किसी तरह का कोई बस नहीं है। दूसरी ओर जर्मन सरकार ने कोयले से चलने वाले 16 बिजली घरों को फिर से चालू करने की योजना बना ली है जो अब तक बंद पड़े थे। कोयले के प्रयोग से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, इसलिए पर्यावरण के लिए काम करने वाले संगठन सरकार के इस मंसूबे से काफी नाराज हैं और बार बार विरोध जता रहे हैं।
50 Jahre altes Kraftwerk
डर्क जॉनसन पर्यावरण कार्यकर्ता है। उनका कहना है कि 50 साल पुराने बिजली घरों को दोबारा चालू करने का मतलब है कि बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होगा। ये बिल्कुल निरर्थक बात है। ऊर्जा का ये संकट गंभीर है और टीकाकार कहने लगे हैं कि इस संकट के चलते रूस यूक्रेन जंग के मामले में यूरोपीय देशों के भीतर गहरे मतभेद पैदा हो सकते हैं। बर्लिन से IRIB के लिए अमीर शुजाई की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा।
और श्रोताओं, अब रुख करते हैं हम भारत का। भारत की राष्ट्रपति पर विवादित बयान देने वाले कांग्रेस नेता उदित राज को राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस भेज दिया है। उदित राज ने अपने बयान में राष्ट्रपति मुर्मू को चमचा कहा था। उदित राज को NCW ने नोटिस जारी करके उनसे सफाई मांगी है। पेश है इस बारे में नई दिल्ली से हमारे संवाददाता शमशाद काजमी की रिपोर्ट।
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेसी नेता उदित राज के एक विवादित बयान को लेकर भाजपा ने कड़ा विरोध जताया है। भाजपा के पूर्व सांसद और कांग्रेस के वर्तमान नेता उदित राज ने अपने ट्वीट में कहा कि ऐसी राष्ट्रपति किसी देश को न मिले। उन्होंने कहा कि चमचागिरी की भी हद होती है। उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा है कि मुर्मू जी कहती हैं कि 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिएंगी तो पता चलेगा। केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने इस विवादित बयान पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस किस तरह से आदिवासियों के विरोध में खड़ी है। भाजपा नेता अमित मालविया ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब उदित राज ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि ये उनकी आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है।
पहली बार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू जी पे अभद्र टिप्पणी नहीं करी है। पहले इनके प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने उनको ईवल बताया, यानी दुष्ट। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने उनको राष्ट्रपत्नी करके संबोधित किया और अब उदित राज ने उन पर जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कही है, उन्हें चमचा अर्थात ऐसे व्यक्ति जिसकी अपनी कोई सोच या अपनी कोई राय ना हो, ऐसा उन्होंने करार दिया।
इसी बीच उदित राज ने विवाद बढ़ने पर सफाई देते हुए कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है जिसे कांग्रेस से न जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति के तौर पर पूरा सम्मान है, वे दलित आदिवासियों की प्रतिनिधि भी हैं और मेरे इस बयान को राष्ट्रपति पद से न जोड़ा जाए। उदित राज ने कहा कि दलितों और आदिवासियों का प्रतिनिधि बनकर उच्च पद पर आने वाले लोग पद ग्रहण करने के बाद मौन धारण कर लेते हैं। उदित राज स्वयं भी दलित समुदाय से संबंध रखते हैं। उदित राज के इस विवादित बयान का राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है और उनसे माफी मांगने को कहा है। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि देश की सर्वोच्च शक्ति और अपनी कड़ी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचने वाली महिला के खिलाफ ये काफी आपत्तिजनक और अपमानजनक बयान है जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने गुजरात के गांधीनगर में 4 अक्टूबर के एक कार्यक्रम में कहा था कि देश में 76% नमक का उत्पादन गुजरात करता है और ये कहा जा सकता है कि राज्य द्वारा उत्पादित नमक सभी भारतीयों द्वारा खाया जाता है। उन्होंने गुजरात मॉडल की भी तारीफ की थी। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणराज ईरान की आवाज। दोस्तों, आप अभी कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा हमारे साथ ही कायम रिजवी से सुन रहे थे। अब आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है कार्यक्रम आज की बात।
आज की बात।
दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम भारत सरकार द्वारा PFI पर लगाए गए प्रतिबंध और उसको लेकर उठने वाले सवालों पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, भारत सरकार ने इस देश के मुसलमानों से जुड़े हुए एक और संगठन पर 5 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया है। इस संगठन पर आतंकी और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगा है। हम बात कर रहे हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI की। भारतीय जांच एजेंसियों के मुताबिक देश भर में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और उसके सहयोगी संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में 1400 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि PFI नेता और सदस्य कथित तौर पर पहले स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी से जुड़े थे, जिसे 2001 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। PFI पर क्यों, कैसे और किसके आदेश पर बैन लगा है, इसके बारे में विस्तार से द वायर की वरिष्ठ संपादक आरफा खानम शेरवानी बता रही हैं।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या PFI पर सरकार ने, भारत सरकार ने पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा इन्हीं से संबंधित कई और संगठन जैसे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, इस पर भी पाबंदी लगाई गई है। और ये पाबंदी आतंकवादी निरोधक जो कानून है, UAPA, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के तहत ये पाबंदी है। यानी कि एक तरह से इसको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन या आतंकवादी संगठन एक तरह से बताया जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर किसी संगठन पर पाबंदी लगती है तो उसके क्या मायने होते हैं, क्या असर पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हमने देखा किस तरीके से एक दर्जन से भी ज्यादा राज्यों में एक तरह से एक संगठित तरीके से जो NIA है और ED है, उनकी छापेमारी हुई, कई सौ लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो दफ्तर है PFI के वो अलग अलग राज्यों में सील किए गए। एक तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक संगठित तरीके से भारत सरकार ने ये काम किया। होम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कहा गया है कि ये भारत की एकता संप्रभुता इसके लिए खतरा था, और जो कानूनी जो यानी कि लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, उसके लिए भी खतरे के तौर पर देखा गया।
इस बीच जहां PFI ने सरकार द्वारा उन पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है, वहीं भारत की कई राजनीतिक पार्टियों ने इस बैन का विरोध करते हुए सरकार से मांग की है कि अगर PFI पर प्रतिबंध लग सकता है तो फिर RSS और उससे जुड़े कट्टरपंथी संगठनों पर क्यों बैन नहीं लगाया जाना चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव ने PFI पर लगे प्रतिबंध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि PFI पर बैन तो लग गया, चलो ठीक है, अब RSS पर कब प्रतिबंध लगाया जाएगा।
PFI का जांच हो रहा है और PFI के तरह जितने भी संगठन हैं, इंक्लूडिंग RSS, ऐसा पर प्रतिबंध लगाइए। एकरूपता लगे, दिखने को लगे, ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा वाहनी भी बनाए थे और RSS को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी, और एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सब को बैन करिए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात।
बता दें कि आरएसएस एक कट्टरपंथी हिंदू संगठन है कि जिस पर दो बार बैन लग चुका है। इसी तरह सीपीएम ने भी पीएफआई के साथ साथ आरएसएस और अन्य कट्टरपंथी हिंदू संगठनों पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। राजनीतिक पार्टियों का आरोप है कि सरकार जिस तरह केवल मुस्लिम संगठनों को निशाना बना रही है उससे गलत संदेश जा रहा है और ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि पीएफआई पर लगे प्रतिबंध को राजनीतिक और कानूनी तौर पर किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इस बारे में भारत के जाने माने वकील महमूद प्राचा से जब ये सवाल किया गया कि पीएफआई पर लगे बैन को वो किस नजरिए से देखते हैं तो उन्होंने कहा,
देखिए बैन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करने के लिए बैकग्राउंड, कानूनी बैकग्राउंड लोगों को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ अगर कोई सरकार प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहती है तो उसका मतलब एक तो इस बात को तस्लीम या एक्सेप्ट करती है कि हम जो नॉर्मल कानून की मशीनरी है वो फेल हो गई है इस स्थिति को या इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस के हिसाब से ये काम करना पड़ा है। तो पहले तो एक चीज ये साफ हो गई कि ये सरकार जो है खास तौर पे इतने यशस्वी होम मिनिस्टर के होने के बावजूद भी इस सिचुएशन को ऑर्डिनरी जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है उससे कंट्रोल नहीं कर सकती, ये एक उन्होंने कंसीड किया। दूसरी बात यह है कि जो हमें देखना चाहिए, एक भारत के संविधान में आर्टिकल 14 है जो पैरिटी की बात करता है और वो पैरिटी और वो एक तरह से सबको ट्रीट करना किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में, किसी भी जुडिशियल एक्शन में या किसी के भी एक्शन में जरूरी एक चीज होती है जो कि हर एक को फॉलो करनी। यहां अब हम एक सिचुएशन देखते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो ओपनली आरएसएस से कनेक्टेड हैं, ओपनली ये बात कहती हैं कि हम भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति के हिसाब से नया संविधान बनाएंगे, नई पार्लियामेंट बनाएंगे और नया राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसके अलावा वो लोग बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उसमें बड़े बड़े लोग सैकड़ों लोगों के बीच में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में, अपने कार्डर्स के बीच में शपथ लेते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरेंगे भी और मारेंगे। ये सब जो चीजें हैं इसको हमारी सरकार, केंद्र की सरकार इस लायक नहीं समझती इन सब एक्टिविटीज को कि इन सब चीजों के लिए जो कि ओपनली कही जा रही है, जिससे कोई मना भी नहीं कर रहा, इसके लिए यूएपीए के तहत इन ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना चाहिए। तो थ्रेशोल्ड क्या हुआ, यहां तक करने के बावजूद भी अगर कोई करता है तो ये ऑर्डिनरी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी जो है उसकी जो सिस्टम है या उसके जो प्रोसीजर्स हैं उससे कंट्रोल की जा सकती। सरकार के पास पीएफआई के खिलाफ इससे कुछ ज्यादा, इस थ्रेशोल्ड से कुछ ज्यादा होना चाहिए अगर वो इसे बैन करना चाहती है। ये एक बुनियादी बात है जो हमारे देश के हर एक नागरिक को समझनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई साजिश के तहत कुछ एक्सट्रेनियस या पॉलिटिकल वजहों से ये बैन लगाया गया।
इसी तरह जब पीएफआई के साथ काफी समय तक जुड़े रहे भारत के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार तस्लीम रहमानी से ये सवाल किया गया कि आप तो इस संगठन से जुड़े रहे हैं तो आप पीएफआई पर लगे बैन को किस तरह देखते हैं, तो उन्होंने इसके उत्तर में कहा,
2008 में ये याद है हमारे चिदम्बरम जी जब होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग बुलाई थी एक राज्यसभा के मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट के घर में, और उसमें बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे और उसमें उन्होंने कहा था कि पीएफआई जो उस वक्त बिल्कुल नई ऑर्गेनाइजेशन थी कि वो रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है और आपके उसको खिलाफ चलना चाहिए, और उन ऑर्गेनाइजेशन से उसमें मुल्क की तमाम प्रीमियर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन मौजूद थी, उनके लीडरशिप मौजूद थी, 25-30 लोग थे, उन्होंने उसको एग्री किया था। 2008 से लेके अभी तक 2022 हो गया, 14 साल का अरसा हो गया। इस अरसे में पिछले 5 साल का जो अरसा गुजरा है उसमें पीएफआई को जितना ज्यादा माइलेज मीडिया के जरिए मिला और हमारी मौजूदा गवर्नमेंट के जरिए मिला उससे पहले कभी नहीं मिला था। रोजाना के हिसाब से उसको प्रमोशन हुआ। पीएफआई बेसिकली साउथ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन थी और है। मैं सुरक्षा एजेंसियों पे भी सवाल खड़ा नहीं करूंगा कि उन्होंने जो कुछ भी फाइंड आउट किया प्राइमा फेसी वो हमको एज ए मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वो सब का सब जो है दैट इज सब्जेक्टेड टू दी जुडिशियल स्क्रूटनी। एक वक्त आएगा एक ट्रिब्यूनल बनेगा, वो ट्रिब्यूनल भी उनकी जांच करेगा, कोर्ट में भी जाएगा मामला, कोर्ट में भी उनकी जांच होगी। तो प्राइमा फेसी उसको लेके उसको बैन करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं लगती बिल्कुल भी।
वहीं पीएफआई पर भारत सरकार द्वारा जो प्रतिबंध लगा है उसके लिए सरकार ने 5 साल की समय सीमा तय की है। इस समय सीमा को लेकर जानकार और राजनीतिक पार्टियां सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पीएफआई देश विरोधी कार्य में संलिप्त है तो उस पर हमेशा के लिए बैन न लगाकर कुछ साल का बैन ये समझ में न आने वाली चीज है। इस सवाल को जब भारत के वरिष्ठ पत्रकार विवेक देश पांडे से पूछा गया कि पीएफआई पर केवल 5 साल का ही बैन क्यों, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा,
5 साल का जो बैन है ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। मतलब 5 साल का ये टाइम पीरियड क्यों दिया गया है ये तो सरकार ही बता सकती है। तो क्या ये सरकार ये समझती है कि 5 साल में संस्था के जो लोग हैं जो जमीन पर काम कर रहे हैं वो ऐसा कुछ कर ले 5 साल के बाद उनका बैन हटाया जा सकता है क्या? अपने जो भी उनके कार्यक्रम है, जो भी उनका जो आइडियोलॉजी है उसको बदल कर वो ऐसे कुछ कामों में तब्दील कर दे जो एक्सेप्टेबल हो, इस तरह का कोई एक मैसेज गवर्नमेंट इनको देना चाहती है क्या पता नहीं, लेकिन ये तो सरकार ही बता सकती है कि 5 साल के पीछे क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है 5 साल के बैन की। लेकिन ऐसा है कि ये पॉलिटिकल विंग जो इनका है एसडीपीआई उसको बैन नहीं किया है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि आप उसकी एक्टिविटी चलने देंगे ताकि इलेक्शन में कुछ इस तरह का माइलेज लेने की पॉसिबिलिटी बची रहे। देखिए एक सबसे अहम मुद्दा इस पूरे एपिसोड का ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन अगर 2007 से इनका काम चल रहा है तो ऐसा क्या हुआ कि पिछले 4-5 साल में, अब ये जो इनको एविडेंस मिला है जो भी पुख्ता एविडेंस कहते हैं, ये एविडेंस क्या है ये पहले थोड़ा सा पब्लिक डोमेन में भी आ जाए कि इनके खिलाफ क्या क्या मिला है। ऐसे अंधेरे में उनको बैन कर देना और हमको ये सब मिला है ऐसा बोलना, अगर मिला है तो बताने में क्या अर्ज है? तो लोग भी जाने कि कौन सी एंटी नेशनल एक्टिविटी चल रही थी, कौन सा रेडिकलाइजेशन चल रहा था और किस तरह का आर्म्स ट्रेनिंग टेरर कैंप वगैरह चल रहे थे, ये मालूम करना इस देश के नागरिकों का भी हक बनता है। तो आप बताइए क्या था।
इसी तरह एक सवाल जो सबसे ज्यादा आम लोगों के मन में उठ रहा है कि अगर मुस्लिम संगठनों पर भड़काऊ बयान देने, लोगों को धर्म के नाम पर एकजुट करने और अपने धर्म की रक्षा के नाम पर युवाओं को संगठित करने के कारण बैन लग रहा है तो फिर देश में सबसे बड़े कट्टरपंथी हिंदू संगठन आरएसएस और उससे जुड़े दर्जनों संगठन जो देश के संविधान को बदलने, देश में हिंदू राष्ट्र स्थापित करने, हथियारों की ट्रेनिंग से लेकर मॉब लिंचिंग और बम धमाकों तक में आरोपी रहे हैं, उन पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती, उन्हें क्यों बैन नहीं किया जाता? कुल मिलाकर सच यही है कि भारत में हालिया कुछ वर्षों में विशेष तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में सब दूध के धुले हैं और कोई गैर कानूनी काम नहीं करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदू धर्म के लोगों में सब दूध के धुले नहीं है। सवाल यही है कि अगर देश में किसी व्यक्ति, संगठन या फिर पार्टी पर कोई कार्रवाई हो रही है तो उस तरह के सारे संगठनों और व्यक्तियों पर बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान हर भारतीय को बराबर का अधिकार देता है, भेदभाव की कोई जगह नहीं है। देश के खिलाफ, देश की शांति के लिए और देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जो कोई भी खतरा बने उसके खिलाफ पूरी सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए, बिना उसका धर्म, पार्टी या जाति देखे। इस आशा के साथ कि देश के किसी भी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी ना हो और भारत की एकता और एकजुटता हमेशा बरकरार रहे, अब हमें अनुमति दीजिए। यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज की बात, और आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम अब होगा सफल महिलाएं, जिसे आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है।
सफल महिलाएं।
दोस्तों, कार्यक्रम सफल महिलाएं की एक अनकड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर है। रविश जैदी और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में भी हम एक और सफल ईरानी महिला से परिचित होंगे। आशा करते हैं आपको कार्यक्रम पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहें।
इंसान का हमेशा से हवा में उड़ने का सपना रहा है। सपने में कुछ ऐसी चीजें भी दिख जाती है जिसका असल जिंदगी से कोई नाता नहीं होता। जैसे इंसान कई बार सपने में अपने आप को उड़ते हुए देखता है, तो कभी अपने अंदर एक दिव्य शक्ति महसूस करता है। स्वप्न शास्त्र अनुसार यह सपने ऐसे ही नहीं आते, बल्कि इनके आने का कुछ न कुछ अर्थ होता है। इंसान के इन्हीं सपनों को विज्ञान ने विभिन्न तरीकों से पूरा किया है। जहाज, हेलीकॉप्टर समेत ऐसी बहुत सारी चीजें इस समय दुनिया में हैं जिसके सहारे इंसान हवा में उड़ते हुए दिखाई देता है। इन्हीं चीजों में से एक है पैराग्लाइडर। पैराग्लाइडिंग बेहद दिलचस्प और रोमांच से भरपूर एक स्पोर्ट्स है, जिसका आनंद ऐसे सभी लोग लेना चाहते हैं जिनका सपना हवा में उड़ने का होता है। पैराग्लाइडिंग करते समय वास्तव में ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में, यहाँ यह कहें कि पिछले कुछ दशक में, पैराग्लाइडिंग दुनिया भर में अधिक लोकप्रिय हुई है। पैराग्लाइडिंग ईरान में भी काफी लोकप्रिय है। ईरान में महिलाओं द्वारा बड़ी संख्या में पैराग्लाइडिंग का स्वागत किया जा रहा है।
ईरान के खेल संघ ने वर्ष 1999 में पैराग्लाइडिंग को देश के मौजूद हवाई खेलों में से एक के रूप में पंजीकृत किया था, जिसके बाद से पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में सक्रिय लोगों ने फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में इस क्षेत्र में आधिकारिक तौर पर अपनी सक्रियता शुरू की थी। खेल संघ से जुड़े अधिकारियों ने पैराग्लाइडिंग को महिलाओं के लिए 33वें खेल के रूप में पेश किया, जिसमें वे अन्य विषयों की तरह बिना किसी प्रतिबंध के औपचारिक रूप से भाग ले सकती हैं। ईरानी महिलाओं के बीच इस खेल को शुरू हुए 20 साल से अधिक का समय हो गया है और वे अब इस क्षेत्र में पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं। यहाँ तक कि कुछ मामलों में महिलाएं पुरुषों से आगे निकल गई हैं और देश में पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए पहले पायदान पर पहुंच गई हैं। इधर कुछ वर्षों से ईरानी महिलाओं के सामने मौजूद कई तरह की समस्याओं के बाद भी महिलाओं ने पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में कई तरह की उपलब्धियां प्राप्त की हैं। ईरानी महिलाओं ने पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इस समय अगर बात की जाए तो ईरान में 100 से अधिक हवा में उड़ने वाली महिलाएं मौजूद हैं।
पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में इस समय ईरान की 31 वर्षीय फातिमा इफ्तिखारी काफी प्रसिद्ध हैं। देश की सबसे प्रमुख पैराग्लाइडर पायलट के तौर पर उन्हें जाना जाता है। साहस, हिम्मत, सोचने का अलग तरीका, जोखिम उठाने का जज्बा, प्रेरणा और उच्च ऊर्जा, यह ऐसी सभी चीजें हैं जिन्होंने फातिमा इफ्तिखारी को सबसे प्रसिद्ध ईरानी महिला पैराग्लाइडर पायलट बना दिया। सुश्री इफ्तिखारी लगभग 13 वर्षों से उड़ान भर रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बहुत सारे खेलों में भाग लिया, लेकिन जब से उन्होंने पैराग्लाइडिंग शुरू की है तब से किसी भी खेल में उनकी रुचि नहीं रही। फातिमा इफ्तिखारी विश्व कप प्रतियोगिता में कोटा प्राप्त करने वाली एकमात्र ईरानी लड़की हैं और उनकी प्रदर्शनों की सूची में अन्य खिताब शामिल हैं। दरअसल एयर स्पोर्ट्स की ओर रुख रखने वाली लड़कियों में फातिमा इफ्तिखारी सबसे सफल महिलाओं में से एक हैं, जो इन दिनों ईरान के आसमान की रानी के नाम से जानी जाती हैं। उन्होंने कजाकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। वह विकास और गतिशीलता के बारे में बहुत गहराई से सोचती है और जीवन में आगे बढ़ना और हवा में उड़ना पसंद करती हैं।
फातिमा इफ्तिखारी कहती हैं कि जब मैं 3-4 साल की थी, तब से खेलकूद मेरे जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन गया था। मेरा पूरा परिवार खेल प्रेमी था। हमारा पूरा परिवार इस्फहान में मौजूद जायंदे रूत नदी में स्विमिंग किया करता था। फातिमा इफ्तिखारी बताती हैं कि मैंने पेशेवर रूप से स्केटिंग और साइकिलिंग भी किया है। इफ्तिखारी से जब ये सवाल पूछा गया कि वो कैसे पैराग्लाइडिंग की ओर आकर्षित हुई, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय का एक एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद पैराग्लाइडर से उड़ान भरने की कोचिंग के बारे में विज्ञापन देखा। उसी ही समय मैंने उस विज्ञापन पर दिए गए नंबर पर फोन किया और अपना नाम रजिस्टर कराया। इफ्तिखारी बताती हैं कि मुझे उड़ना इतना पसंद है कि मैं कभी भी नींद में नहीं चलती थी, बल्कि हवा में उड़ती थी। मैंने अपने भाई के साथ अपना नाम पंजीकरण कराया ताकि हम एक दूसरे का सही से ख्याल रख सकें। वर्ष 2017 में तुर्की के कासेरी शहर में एक पैराग्लाइडर प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इन प्रतियोगिताओं में तुर्की, इराक, ईरान, स्विट्जरलैंड और रूस के 110 पैराग्लाइडर पायलटों ने भाग लिया था। महिलाओं में फातिमा इफ्तिखारी ने पहला स्थान प्राप्त किया था।
फातिमा इफ्तिखारी कहती हैं कि उनके लिए पदकों को हासिल करना और रिकॉर्डों को बनाना महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए जो चीज़ सबसे ज्यादा महत्व रखती है वह है हवा में उड़ना। जब वह उड़ती हैं तो वह क्षण उनके लिए जीवन का सबसे सुखद क्षण होता है। वो कहती हैं कि पतझड़ के मौसम में आसमान में उड़ने का अलग ही मजा है, क्योंकि इस मौसम में आसमान में बाज और चील बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं और जब वह हवा उड़ रही होती है तो कभी कभी बाज और चील उनके बहुत करीब आ जाते हैं, उनके साथ साथ काफी दूर तक उड़ते रहते हैं। ऐसे समय में उनको एहसास होता है कि जैसे वह खुद एक परिंदा है। इफ्तिखारी कहती हैं कि यह एक ऐसा सुखद और बेहतरीन क्षण होता है जो दुनिया के सभी पदकों और रिकॉर्डों से कहीं ज्यादा मन को शांति देता है। वे कहती हैं कि ऐसे क्षण उन्हें अधिक प्रेरणा और जीवन को शक्ति प्रदान करते हैं। फातिमा इफ्तिखारी बताती हैं कि 14 जुलाई 2014 को कुछ पैराग्लाइडर पायलटों ने यह तय किया कि वे ईरान के चहार महाल बख्तियारी प्रांत में स्थित जर्दकू को पार करेंगे। उस समय पहली बार पैराग्लाइडर पायलटों द्वारा ऐसा करने का फैसला किया गया था, बिल्कुल किसी सपने की तरह ही था।
फातिमा इफ्तिखारी कहती हैं कि हमने कुछ लोगों के साथ शुरुआत की, उनमें से कुछ ने बीच में ही हार मान ली और अंत में हम में से केवल 3 लोग ऐसे थे जो जर्दकू पीले पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। इफ्तिखारी कहती हैं कि ये मेरे लिए बहुत अजीब था। मैं एक ऐसे पहाड़ के बगल में उड़ रही थी जिसकी चोटी 5000 मीटर की ऊंचाई पे थी। मैं उससे पहले कभी भी इतने ऊंचे पहाड़ के बगल में नहीं उड़ी थी। उड़ते समय मैंने संकरी पहाड़ी घाटियों को देखकर डर, उत्तेजना और चिंता के बीच फंस गई थी, लेकिन जब हमारी उड़ान समाप्त हुई तब मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा था। उस दिन मैं बर्फ से भरी एक दीवार के पास उड़ रही थी और मैंने पहाड़ के पीले झरने देखे। पूरे रास्ते मेरे बगल में चील उड़ रही थी और मैंने उनका घोंसला देखा। मुझे लगा कि वे कह रहे हैं कि हम एक साथ उड़ना चाहते हैं। पहाड़ की महानता और उस संकरी घाटी ने जिसमें मैं थी मुझे अपनी ओर काफी आकर्षित किया। उस दिन मैं अब तक इस्फहान और खुजिस्तान के कई अन्य पायलटों ने भी जर्दकू की चोटी पर पहुंच कर वहां से उड़ान भरी। We'll be right back.
नीले आकाश के अनंत में सुश्री इफ्तिकारी की शक्तिशाली और साहसी उपस्थिति इस बात की अभिव्यक्ति है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान में महिलाओं के विकास और स्वतंत्रता का आधार प्रदान किया गया है। देश की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पूरी आज़ादी के साथ सकारात्मक और उपयोगी कदम उठा सकती हैं। इस बारे में फातिमा इफ्तिकारी कहती हैं कि ईरान में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो खुलकर उड़ती हैं, लेकिन उन्हें कम देखा गया है। पहले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहां महिलाओं को खेलों में देखा जा सकता था, लेकिन अब वेबसाइटों और वर्चुअल पेजों के वजूद में आने के बाद स्थिति बेहतर हुई है। मैंने खुद एक वेबसाइट तैयार की है और अपने उड़ान के अनुभवों को कहानियों के रूप में लिखना शुरू किया, और मैंने सभी ईरानी महिलाएं पायलटों को अपनी आत्मकथाएं भेजने के लिए कहा और निश्चित रूप से इसे खूब सराहा भी गया। उसके बाद हमने अपनी गतिविधियों का ऑनलाइन विस्तार किया ताकि सभी महिलाएं पायलट एक दूसरे को जान सके। मेरा लक्ष्य खेल की और अधिक महिलाओं को आकर्षित करना है।
फातिमा इफ्तिखारी कहती हैं कि हमने अब तक वर्चुअल स्पेस में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस क्षेत्र में मेरे प्रयासों का फल मुझे मिला। महिला पायलटों को भले ही गंभीरता से न लिया जाए, लेकिन मैं खुद इस क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाली हर उस महिला को प्रोत्साहित करती हूँ जिसे मैं देखती हूँ। मेरा काम है कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार अपने प्रयास को जारी रखूँ और इससे मुझे शांति भी मिलती है। फातिमा इफ्तिखारी की शादी हो चुकी है। उनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही खुशियों भरा है। वो अपने वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हुए कहती हैं कि मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान और बेहतरीन सहयोगी हैं। हमारी जान पहचान भी उड़ान के जरिए ही हुई थी। वो पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र से जुड़े एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उनके भाई भी पैराग्लाइडिंग के मशहूर कोच हैं। हमारी जान पहचान इसी खेल के दौरान हुई और हमने शादी कर ली। आज वो मेरे सबसे अच्छे समर्थक और मुझे प्रोत्साहन देने वाले हैं। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। हम Oh,